منگل آرتی کتنے بجے؟ ساڑھے پانچ پانچ
جانا
شام کا پروچ زیادہ لمبا نہیں ہوئے گا, اور اس کے بعد دادا راج پہ جب کیرتن کریں گے ساتھ 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 جڑے رہنا. ان کو چنتا تھی کہ آپ لوگ پرساد کرے بھاگ جاؤ گے, جب پرساد شروع ہوگا اس کیرتن کے سماپتی پر میں گلا بھی تھوڑا بیٹھ گیا. تو میں نے کہا تھا صبح کہ شام کے پروچن میں آپ کو یہ چندن یاترا کی کتھا سناؤں گا. کل سے اگر آپ کے گھروں میں ویشنو کیلنڈر ہے, آپ ایسے کن کن کے گھروں میں ویشنو کیلنڈر ہے؟ لگ بھگ سب کے. یہ بہت آوشک ہے, آپ سب کیلنڈر گھر میں رکھو اور پہلے ہی دیکھ لیا کرو اگر اگلے ہفتے کیا کیا شبھ دن ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل سے لکھا ہے چندن یاترا 21 دنوں کے لیے, دیکھا آپ نے؟ اور شاید آپ ہر سال دیکھتے ہو, پر اگر آپ نے دھیان سے دیکھا ہو آج شام کو جو گور آرتی کے سمے مورتیاں یہاں تھیں, انہیں ایک مورتی تھی رادھا کرشن کی جس میں چندن لگا ہوا تھا, آپ نے دیکھ ابھی بھی ہے. اور اگر آپ کا کرشن باندھا مندر گئے تھے ورنداون میں, شاید آپ نہیں گئے, تو کل چندن یاترا والے دن شام کے 4 بجے کے بعد بھگوان کا شنگار صرف چندن سے ہوتا ہے, وستروں سے نہیں, پورا شریر ڈھکا جاتا ہے چندن کے ساتھ. تو کئی بار بھکت پوچھتے ہیں کہ اس لیلا کے پیچھے کتھا کیا ہے, اس لیلا کا ورنن ہمیں چیتن یا چرتامرت میں پراپت ہوتا ہے. چیتن چرتامرت میں چیتن مہاپربھو جی کی لیلاؤں کا ورنن ہے, ان کے اپدیش کا. اور چیتن چرتامرت کی رچنا کس نے کی ہے؟ کرشنا داس کا وراج. چیتن مہاپربھو جی کے وشے میں آپ چیتن بھگوت, چیتن منگل اور چیتن چرتامرت دوارا جان پراپت کر سکتے ہو. چیتن مہاپربھو جی کون تھے؟ سوئم بھگوان. پر انہوں نے بھی گرو سویکار کیا تھا جن کا نام تھا ایشور پوری, اور ایشور پوری نے بھی گرو سویکار کیا تھا جن کا نام کیا تھا مہاجندر پوری. تو یہ چندن یاترا اتسو مہاجندر پوری نے شروع کیا تھا آج سے لگ بھگ 700 سال پورو. چیتنیا مہاپربھو جی ایک سمے رمنا میں گئے تھے, یہاں کی ایک بڑا پرسدھ مندر ہے شری کھیچور گوپی ناتھ کا. پہلے اس ان وگرہ کا نام تھا شری شری رادھا گوپی ناتھ, پر کوئی 700 سال پہلے ایک بڑی پرسدھ لیلا بیتی تھی مہاجندر پوری کے ساتھ, جس کے پشچات ان وگرہ کا نام کیا بن گیا؟ شری شری رادھا کھیچور گوپی ناتھ, مطلب کہ وہ گوپی ناتھ جسے کھیر چڑھایا تھا کس کے لیے؟ مہاجندر پوری کے لیے. تو چیتنیا مہاپربھو جی جب کھیچور گوپی ناتھ کے مندر میں پہنچے بھگوان نتیانندا جی کے ساتھ, تو انہیں وہ لیلا یاد آ گئی. کون سی لیلا؟ یہ چند مہاجندر پوری کی لیلا. تو مہاجندر پوری بہت ہی اونچی کوٹی کے ویشنو تھے, 24 گھنٹے بھگوان کے سیوا میں جڑے رہتے تھے. پھر رات پرم بھگوان کا گنگان, نہ انہیں सोने की चिंता थी ना खाने की, अगर सोते भी थे तो आधे घंटे के लिए। आप कहोगे ये कैसे, जब हमारे 6 गोस्वामी थे इस पृथ्वी पर 500 साल पूर्व, उनके विषय में भी कहा गया है वो सोते थे मुश्किल से आधा घंटा एक घंटा तेज घंटे लगाते थे किसमें, परम भगवान का गुणगान में। तो ठाकुर भक्तियों जी महान आचार्य थे, हम उनका शेड्यूल पढ़ रहे थे, उनके शेड्यूल में 24 घंटे में कोई 3 घंटे थे विश्राम के लिए बस, और प्रभुपाद जी के शेड्यूल में भी 24 घंटे में 3-3.5 घंटे निकलते थे विश्राम के लिए। तो जब हम संत हैं ज्यादा विश्राम नहीं करना चाहते, क्यों, क्योंकि सोना क्या मृत्यु के बराबर है, वो चाहते हैं कि सदा भगवान का गुणगान किया जाए। तो महावीर पुरी ने एक दिन गोवर्धन की परिक्रम की थी, और गोवर्धन की परिक्रम समाप्त करके थके हुए थे और इसलिए विश्राम कर रहे थे गोविंद कुंज में। आप सभी जब गोवर्धन की परिक्रम करते हो गोविंद कुंज में शरद रुकते हो, नहीं सबने गोवर्धन परिक्रम की है सबने, हमारे कई भक्त जो कार्तिक में रोज ही करते हैं। तो जो गोविंद कुंज में रुके थे विश्राम कर रहे थे, तो एक बहुत ही खूबसूरत ग्वाला वहां आया, जिसने देखा कि संत थके हुए हैं, और उन्होंने एक मटका जिसमें दूध था इस संत को दे दिया पीने के लिए, और कहा आप ये दूध पियो, आप थोड़े भूखे नजर आते हो। वासुदेवपुरी के अनेक गुणों में एक गुण ये था कि वो कभी भी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, अगर किसी ने उन्हें कुछ खाने के लिए दे दिया तो खाते थे, अगर किसी ने नहीं दिया तो भूखे सो जाते थे। तो वासुदेवपुरी आश्चर्य हो गए इस खूबसूरत लड़के को देखकर, एक तो ये ग्वाला बहुत ही खूबसूरत था, दूसरा वो आश्चर्य हो गए थे ये देखकर कि इसे कैसे पता कि मुझे थोड़ी भूख लगी है और मैं थका हुआ हूँ। तो महावीरपुरी ने उनसे पूछा आपको कैसे पता कि था कि मैं भूखा हूँ और थका हुआ हूँ। तो ग्वाले ने कहा कि मेरे गांव की औरतें कुएं से पानी लेने के लिए जा रही थी, उन्होंने जब आपके चेहरे को देखा उन्हें लगा कि आप भूखे हो, और मेरे गांव में कोई भूखा नहीं जाता, तो ये दूध पी लो और मैं थोड़ी देर में आता हूँ ये लोटा लेने के लिए। तो माधवपुर ने दूध पी लिया, उस खूबसूरत ग्वाले की राह देखी, ग्वाला लौटा ही नहीं। तो वहां कुएं को हल्की सी नींद आ गई, और नींद में वही ग्वाला जो कि दूध लेकर आया था सपने में आया, और वो ग्वाला कहने लगा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ और एक खास सेवा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मुसलमानों के हत्याचार से बचने के लिए मेरे पुजारियों ने मेरे को छुपा दिया था इस स्थान में झाड़ियों के नीचे, और मैं चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है वहाँ, आप मुझे वहां से निकाल कर मेरी स्थापना करो और ठीक स्थान पर। भगवान वज्र ने इस मूर्ति का की स्थापना की थी। पर कोई 600-700 साल पूर्व जब मुसलमानों का राज्य था तो क्या एक भाव ये था सब हिंदू मतों को नष्ट करो। असल में आप सब ठाकुर भक्तिरो जी से परिचित हो ना, माय महान सन। तो ठाकुर भक्तिरो जी एक लेख में अंग्रेजों का आभार प्रकट करते हैं। आप वैष्णव होगा आपको ये पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ठाकुर भक्तिरो जी ने कहा अपने लेख में कि अंग्रेजों ने कम से कम मुसलमानों जो मंदिरों को तोड़ रहे थे उन्होंने रोक दिया, क्योंकि उन्होंने मंदिरों को छोड़ा जा रहा था। इसलिए वृंदावन की कई मूर्तियों को उठाकर वो ले गए थे जयपुर। इसलिए जयपुर का एक और नाम है गुप्त वृंदावन। तो महावेंद्रपुरी को जब भगवान ने आदेश दिया सपने में, तो महावेंद्रपुरी एक रूप से शर्मिंदा हो गए। क्यों शर्मिंदा हुए? क्योंकि उन्होंने भगवान के हाथों से सेवा स्वीकार कर ली थी। भगवान ने उन्हें लोटे में दूध पिलाया। तो भाग्य है भगवान की केवल सेवा करना चाहता है, सेवा लेना नहीं चाहता। आप एक बड़ी प्रसिद्ध कथा पढ़ते हो कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि उस समय के बड़े प्रसिद्ध भक्त थे, बड़े करोड़पति खानदान के पुत्र थे, फिर उन्होंने सब प्रकार की आर्थिक सुविधा त्याग कर राधाकुंड में आए थे भगवान का भजन करने के लिए। और रघुनाथ दास गोस्वामी राधाकुंड में, आज तो आप राधाकुंड जाओ तो चारों तरफ आपको आश्रम दिखते हैं। पर उस समय कोई आश्रम नहीं था और रघुनाथ दास गोस्वामी धूप में बैठकर सारा दिन सुबह से रात तक भजन करते थे। तो राधा रानी जी ने देखा कि उनका शुद्ध भक्त इतने कठिन वातावरण में जाप कर रहा है। तो राधा रानी जी एक दिन आ गई और अपने साड़ी के छाता के रूप में, दुपट्टे को छाता के रूप में रखकर रघुनाथ को धूप से बचा रही थी। रघुनाथ ने यह देखा भी नहीं क्योंकि वो जाप में जुड़े हुए थे। पर सनातन गोस्वामी वहां से गुजर कर जा रहे थे और उन्होंने देखा कि राधा रानी जी अपने भक्त की सेवा कर रही है। तो सनातन ने रघुनाथ को डांटा और कहा, तुमने राधा रानी जी से सेवा ली, तो भक्त शुद्ध भक्त की इच्छा रहती है कि वो केवल सेवा करे और सेवा ले रहे। तो वादन पूरी को दुख हो रहा था कि उन्होंने भगवान से सेवा ली है। खैर अगले दिन सुबह महावेंद्रपुरी ने ब्रज के गोस्वामी को कहा कि सपना आया था और सबने निर्णय किया, चलो खैंची लेकर हम जाते हैं झाड़ियों को काटने के लिए और खोदने के लिए, देखने के लिए कि इसी स्थान में भगवान का विग्रह छुपा हुआ है या नहीं। तो उन्होंने झाड़ियों को काटा, खोदा और उसी स्थान में जिसका वर्णन हुआ था सपने में, उन्हें क्या प्राप्त हुआ? वो विग्रह प्राप्त हुआ। और फिर बाद में पूरी ने बहुत सुंदर अभिषेक का प्रबंध किया, सब चार दिनों में कर दिया। हमें मूर्ति स्थापना करनी होती है, हमें इतना समय लग जाता है। बाद में पूरी ने दो बड़े पत्थर लिए और उसमें भगवान की स्थापना की और गोवर्धन के सब भक्तों को जोड़ा भगवान की सेवा में। लगभग हर खानदान ने कुछ न कुछ सेवा में दान दिया, किसी ने गाय दी, किसी ने खेती दी, और थोड़े समय में ही भगवान जो थे सबसे बड़े जमींदार बन गए उस इलाके के। तो इस प्रकार मानवेंद्र पुरी ने 2 सालों के लिए भगवान की सेवा की, ब्राह्मणों को दीक्षा दी। फिर 2 साल बाद मानवेंद्र पुरी को फिर से एक सपना आया, और उस सपने में भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा भारी हूँ कि तुमने मेरी स्थापना की, पर मुझे अभी गर्मी लग रही है तो मुझे चंदन लाओ। हमारे एक मंदिर में हम भगवान को चंदन लगाते हैं, पर केवल गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में नहीं। तो भगवान ने कहा कि मुझे गर्मी लग रही है तो जाके क्या लाओ, मैंने चंदन लाओ। तो महाजेंद्र पुरी ने गोपाल की देखभाल अन्य शिष्यों के ऊपर छोड़कर वो चले उड़ीसा की ओर चंदन लाने के लिए। आज अगर अपनी यात्रा करनी हो गोवर्धन से उड़ीसा तो क्या करोगे, या दिल्ली आके जहाज पकड़ोगे या गाड़ी पकड़ोगे, है ना? पर उन दिन में ये सुविधा तो नहीं थी। तो महाजेंद्र पुरी पैदल चलकर आए कहाँ, उड़ीसा तक। और उड़ीसा में जब वो आए तो उड़ीसा में एक और बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है रेमुना का, रेमुना में श्री श्री राधा गोपीनाथ का। उस मंदिर में बहुत ही अच्छा भोग अर्पण किया जाता है भगवान को। हम मंदिरों में भगवान को भोग अर्पण करते हैं, जगन्नाथपुरी में कितनी बार करते हैं, 56 बार। पर वैसे हम इस्कॉन मंदिर में 8 बार करते हैं सर। और खास करके उस मंदिर में जो खीर बनाई जाती है भगवान के लिए, उसको खास नाम दिया गया है। कहा गया है अमृत केली खीर, जो कि स्वर्ग में बनती है भगवान की प्रशंसा के लिए। तो महाजेंद्र पुरी जब रेमुना में राधा गोपीनाथ के मंदिर में पहुंचे तो उनके मन में यह भावना प्रकट हुई कि अगर मुझे भी ये खीर चखने का मौका मिल जाए तो मैं लौटकर अपने गोपाल के लिए भी इसी प्रकार की खीर बनाऊंगा। पर ये भावना उनके हृदय में प्रकट हुई जबकि भगवान को भोग लग रहा था। सिद्धांत यह होना चाहिए कि जब आप भोग बना रहे हो आपके मन में भाव रहना चाहिए कि भोग बन रहा है किसके लिए, भगवान के लिए। और जब भोग लगा रहे हो तो भावना होनी चाहिए भगवान कृपा करके इस भोग को स्वीकार करो। और जब भगवान स्वीकार कर लें, अक्सर मंदिर में हम 10-15 मिनट देते हैं भगवान को खाने के लिए, कई बार आधा घंटा देते हैं और कई बार कम देते हैं। और जब भगवान खा लें भोग को, फिर हम भोग को उठाकर निकालकर खुद खा सकते हैं और बांट सकते हैं। पर जब हम भोग बना रहे हैं तो हमारे मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हमने चखना है, हम जल्दी में हमने खाना है। तो बाबा पूरी के मन में ये भावना प्रकट हुई थी चखने की, कब जब भगवान को भोग लग रहा था तो महानंदपुरी ने महानंदपुरी को ये अच्छा नहीं लगा और बिना चखे महानंदपुरी किशोर गोपीनाथ का मंदिर छोड़कर चले गए शहर में भजन करने के लिए। तो उस दिन रात को जो पुजारी थे उन्हें सपना आया और उस सपने में गोपीनाथ ने कहा कि मैंने एक खीर का प्याला छुपा दिया है पर्दे के पीछे होटल में, और तुम इस खीर के प्याले को लेकर बाजार में जाना, इस स्थान में जहाँ की महानंदपुरी नाम का एक प्रसिद्ध भक्त होगा तो खीर का प्याला उसे दे देना। तो पुजारी को विश्वास ही नहीं हुआ कि भगवान ने एक खीर का प्याला चुरा कर छुपाया है। खैर पुजारी जी सुबह जागे और गए स्नान करके भगवान को देखने के लिए। उन्होंने देखा कि सच है, सचमुच भगवान ने एक खीर का प्याला चुरा कर कहाँ छुपा दिया था, पर्दे के पीछे। तो पुजारी ने कहा कौन है ये भाग्यवान भक्त जिसके लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया। तो गए बाजार में उसी स्थान जिसका वर्णन हुआ था सपने में और कहा चुरा रहे थे यहाँ कोई महानंदपुरी नाम का भक्त है क्या। और जब महानंदपुरी ने सुना कि उनके नाम को पुकारा जा रहा है तो उन्होंने कहा मैं हूँ। और फिर महानंदपुरी को इस ब्राह्मण ने सपने के विषय में कहा। महानंदपुरी इतने खुश हुए कि भगवान ने, क्योंकि उनकी इच्छा क्या थी खीर चखने का, तो वो नहीं चख पाए थे, तो बड़े खुश हुए ये देख कर कि भगवान ने खीर का प्याला चुरा लिया था। किसके लिए? उनके लिए। तो पूरे शहर में ये खबर फैल गई कि यहाँ ये प्रसिद्ध भक्त है जिसकी प्रशंसा के लिए भगवान ने खीर चुराई थी। तो जहाँ भी महानंदपुरी जाते थे बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और जहाँ भी हो गए पूरे शहर में सबको पता लग गया था क्या कि ये वो प्रसिद्ध भक्त है जिसकी प्रशंसा के लिए भगवान ने खीर चुराई थी। तो महानंदपुरी को ये अच्छा नहीं लगा। साधारण समाज में कोई आपकी प्रशंसा करे, खुशामद करे तो आप खुश होते हैं कि नहीं? इसके लिए आप देखते हो जब ये राजनीतिक नेता जाते हैं कहाँ प्रवचन देने के लिए तो ट्रकों में भरकर लोगों को लाया जाता है ना, उनकी जय बोलने के लिए। तो जो भक्त है उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो बात है ना, कोई कोई अच्छा नहीं लगा कि जहाँ वो जाते थे लोग उनका गुणगान कर रहे थे। तो महानंदपुरी पे चले गए जगन्नाथपुरी। उनका लक्ष्य क्या था? चंदन लाना। किसके लिए? गोपाल के लिए। फिर वो चले गए जगन्नाथपुरी। यहाँ की जगन्नाथपुरी मंदिर के अधिकारियों ने सहयोग दिया और 80 किलो चंदन अपने कंधों में उठाकर वो चल पड़े कहां गोवर्धन की ओर। और चेतन चतन में कहा गया है कि उस समय जो चुंगी वाले थे मुसलमान थे, तो जगन्नाथपुरी के मंदिर के अधिकारियों ने उन्हें पत्र दिया था कि चंदन हमारे मंदिर से आला है दान के रूप में, आज ही हम यही करते हैं। जब हमारे भक्त विदेश से आते हैं कुछ खरीदने भारत में, तो एक पत्र ले लेते हैं कि उन्हें दान में मिला ये सब, लेकिन उन्होंने बताई नहीं। तो महाजनपुरी 80 पाउंड चंदन उठाकर चल पड़े कहा गोदान की ओर। पर रास्ते में यमुना आता है या आया था, और फिर महाजनपुरी एक रात के लिए रुके उस मंदिर में। जब वो एक रात के लिए रुके उस मंदिर में, तो उस दिन रात को उनके विग्रह गोपाल ने उन्हें सपने में कहा, क्या उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा भारी हूँ कि तुमने इतनी तपस्या करके इतनी दूर चल कर आए और आप 80 किलो ये चंदन लेकर तुम्हारे हो वापस गोवर्धन, फिर मैं तुम्हें इतना कष्ट नहीं देना चाहता। मेरे में और गोपीनाथ विग्रह में कोई अंतर नहीं है। गोपीनाथ विग्रह कौन है? यमुना के बेटा। तो गोपाल जी कह रहे हैं कि मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, तो तुम ये चंदन यहाँ ही लगा दो इनकी सेवा में। किसकी सेवा में? गोपीनाथ की सेवा। तो अगले दिन सुबह महाजनपुरी जी ने ये सपना सुनाया गोपीनाथ जी के पुजारी को। पुजारी जी तो खुश हुए, उन्हें 80 पाउंड का चंदन मिल गया। फिर महाजनपुरी ने उसी मंदिर में शुरू किया और 21 दिनों के लिए क्या किया, भगवान को अपने हाथों से चंदन से सजाया। तो उस पहली चंदन यात्रा की लीला बीती थी महाजनपुरी जी के द्वारा, कब? लगभग 700 साल पूर्व। कहा? यमुना उड़ीसा में। और अब लगभग जितने भी वैष्णव मंदिर हैं, खास करके उत्तर भारत में, तो वहाँ 3 हफ्तों के लिए, खास करके इस्कॉन के मंदिर में 3 हफ्तों के लिए हम क्या करेंगे? भगवान को चंदन से सजाएंगे, क्योंकि सबसे पहली बार ये लीला बीती थी महाजनपुरी के जी के द्वारा। तो चंदन लगाया जाता है भगवान के शरीर को ठंडा करने के लिए। भगवान अपने आप को आचार्य विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं, और इस आचार्य विग्रह के रूप के द्वारा हम सबको मौका देते हैं क्या, उनकी सेवा में जुड़ने के लिए। और भक्त जो है भगवान के आचार्य विग्रह की सेवा अनेक रूपों से करते हैं। जो ब्राह्मण दीक्षित हैं वो भगवान के आचार्य विग्रह की पूजा कर सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं, उनके लिए भोजन बना सकते हैं। और जो ब्राह्मण दीक्षित नहीं है वो भगवान के लिए नाच सकते हैं, गा सकते हैं। तो भगवान अपने आज विग्रहा के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं और हमें मौका देते हैं क्या उनकी सेवा में जुड़कर अपने शुद्ध मन और इंद्रियों को शुद्ध बनाने के लिए। जो निराकार वादी हैं, मायावादी हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि भगवान के विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं। पर जो वैष्णव भक्त हैं, वो जानते हैं कि भगवान का दिव्य रूप है। भगवान जैसे गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चामे दिव्य। तो भगवान का विग्रह जो है वो भी दिव्यम है। और अगर हम इस भावना से उनकी सेवा में जुड़ेंगे तो फिर ये भगवान अपने दिव्य रूप आपको प्रकट करेंगे और इस विग्रह और भगवान में अंतर है नहीं। आप पढ़ते हो कि जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो पूरी प्रजा उनकी उपासना कर रही थी। तो एक समय जब भगवान राम अयोध्या के बाहर थे दो हफ्तों के लिए, तो जब वो लौटे तो ये भाई लक्ष्मण ने कहा, ये ब्राह्मण रोज भोजन स्वीकार करता है आपका दर्शन करने के पश्चात, और क्योंकि दो हफ्तों के लिए आप नहीं थे, इस ब्राह्मण ने कुछ खाया नहीं, ये भूखा है। तो भगवान राम ने अपना ही विग्रह उठाकर उसे दिया और कहा, इस विग्रह की उपासना करना, इस विग्रह और मेरे में कोई अंतर नहीं। तो ये है वैष्णव सिद्धांत। और जो गृहस्थ भक्त हैं, वो अपने घरों में गुणिताई रख सकते हो। गुणिताई के विषय में कहा गया है, वो अत्यंत दया दयालु है और भक्तों को बड़ी सरलता से सेवा में जुड़ने का मौका देते हैं। तो भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं और ये चंदन यात्रा उत्सव शुरू हुआ था माधवेंद्रपुरी जी के द्वारा। पर अगर आप भक्तों के घर में विग्रह हैं गौणिताई के भी, तो आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा चंदन तीन हफ्तों के लगा सकते हो। हमारे मंदिरों में तो हम छोटे विग्रह को पूरा ढकते हैं चंदन के साथ तीन हफ्ते के लिए। पर अगर आप ये नहीं कर सकते तो थोड़ा चंदन भी लगा सकते हो भगवान के शरीर को ठंडा करने के लिए। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है? क्योंकि शाम के उन्होंने कहा था प्रश्न उत्तर भी है ना। सुनो कृषि, एक शाम का प्रोग्राम कब 9 बजे लगता ना? कुछ एक 10-15 मिनट्स नॉट टू लॉन्ग, फिर सुबह कोई नहीं आएगा। कल का प्रोग्राम लोगों को मालूम है? कल का प्रोग्राम बताया हुआ है सबको मालूम है कल का शेड्यूल? ओके। और फिर सब लोग 10-15 मिनट के लिए नाच राजा राज बिहारी विल लीड अ नाइस कीर्तन। मैं चाहता हूँ कि आप सब वो कीर्तन थके तो नहीं ना। रशिया में हमारा एक फेस्टिवल होता है ब्लैक सी में, तो कई बार वहाँ कीर्तन शुरू होता है रात के 9 बजे और सुबह 4 बजे तक चलता है लगातार। कई बार मंगल आरती तक चलता है पूरा पूरा रात कीर्तन। पास
sometimes we see spiritual dreams, for example spiritual master giving an instruction or we see Srila Prabhupada, how one should understand this? Should one try to follow what he saw or they are just impressions of the mind?
इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक और विषय की मैं चर्चा करना चाहता हूँ। महाजनपुरी की कथा में आपने देखा कि तीन बार उन्हें भगवान ने सपने में आदेश दिया है ना, पहली बार खोजने के लिए, दूसरी बार चंदन लाने के लिए, तीसरी बार चंदन को वहीं छोड़ने के लिए। तो आप कहोगे हमें भी सपने में भगवान बहुत आदेश देते हैं कि हमें इसका पालन करना चाहिए। तो इस विषय में प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर आप आत्मज्ञानी व्यक्ति बन जाओ फिर तो आपके सपनों में का महत्व रहता है, पर जब तक आप आत्मज्ञानी नहीं बनो जब तक सपने द्वारा आदेश मत स्वीकार करना, जब तक गुरु द्वारा स्वीकार करना। तो आप कहोगे उन्हें तो सपने में भगवान ने कहा ये करो, इसमें मैं ये कर रहा हूँ। जब आप शुद्ध भक्त बन जाओगे महाजनपुरी जैसा, जब भगवान आपको सपने में आके इस तरह। अच्छा तो प्रश्न क्या था ये, व्हाट्स द क्वेश्चन? No, it's auspicious when you have dreams of the spiritual master of Krishna instructing you. But whatever the instructions are, get them reconfirmed with the spiritual master. Otherwise, you can end up dictating to your mind whatever you want to hear. The mind has a unique capacity to dictate whatever you want. Okay. He's getting ready with his orchestra. I don't care. Huh? I can reply. Tinka Prashadi Ataki Kaibar भगवान या गुरु सपने में कुछ आदेश देते हैं तो हमें उसको किस रूप से स्वीकार करना चाहिए। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है कि भगवान और आपको भगवान और गुरु के सपने आते हैं, पर सपने में जो आदेश दिया जाता है उसको डबल कंफर्म कर लो गुरु के साथ।
When we request the people to participate in Harinam Kirtan or visit Krishna temple, they get excited that they do not have the blessing to Lord Krishna. Shall we stop them preaching to visit the temple?
They say they don't have the blessing to Lord Shri Krishna.
Yeah. And they say without Lord's instructions, they cannot, nothing will move. So when you instruct, we will go to the temple.
So in your question, you have to say, when they mantra, they say, people go. मंदिर में आने के लिए हरि नाम करने के लिए तो लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं अभी हमारे पर भगवान की कृपा नहीं है तो हम नहीं आ सके, है कि नहीं? भगवान की कृपा नहीं है पर भगवान ने संतों को भेजा है आपको खींचने के लिए, है ना? चाणक्य पंडित जी कहते हैं साधु की संगत प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। चाणक्य पंडित जी ने कहा है जैसे हीरा हर साल में प्राप्त नहीं होता, ये थोड़ी कि जिधर जाओगे आपको आज भी हीरा मिलेगा। उसी प्रकार चाणक्य पंडित जी कहते हैं साधु संगत बहुत ही दुर्लभ है। फिर इसलिए चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि जब आपको साधु संगत का अवसर मिले तो उसका पूरा लाभ उठाओ। अगर कोई कहे कि हमें भगवान ने आदेश नहीं दिया मंदिर जाने के लिए तो आप कहो इसे तो भगवान ने हमें भेजा है आपको निमंत्रण देने के लिए।
हाँ,
why are you reading your questions in English? They're all coming in English?
They're all coming in English.
Oh, no problem. Okay. So, how do you get rid of the poison of envy? द्वेष से कैसे बचना? इस प्रश्न में उन्होंने स्वीकार किया है ईर्ष्या द्वेष झेर के बराबर है ना। तो आप लोग सुबह के लेक्चर में थे सब, तो सुबह के लेक्चर में हम आपको भगवान का उपदेश सुना रहे थे किसे, उद्धव जी से, जिसमें उद्धव जी ने कहा कि किस प्रकार का स्वभाव शिष्य का या भक्त का होना चाहिए। और भगवान ने काफी गहरा उपदेश दिया है उस श्लोक में। और इसमें ये भी भगवान ने कहा क्या कि किससे बचो, ईर्ष्या से बचो। सो ईर्ष्या द्वेष के कारण आपकी भक्ति नष्ट हो सकती है। ईर्ष्या द्वेष के कारण आप वैष्णव अपराध करोगे और वैष्णव अपराध करोगे तो आपकी भक्ति बढ़ने की बजाय आप विचलित होने जाओगे। और ये भी संभव है कि हाय नाम आपके जीव से छुट जाएगा। इसलिए शास्त्रों में अनेक स्थानों में इस विषय पर बल दिया जाता है, ईर्ष्या द्वेष से बचो। ईर्ष्या द्वेष से कैसे बचोगे? दूसरे के गुणों को देखो, दूसरों को आदर दो। इस विषय में हमने सेवा के प्रवचन में समझाया था कि चैतन्य महाप्रभु जी का जो सिख शास्त्र का तीसरा श्लोक है, अगर आप इस श्लोक को ध्यान से समझ लो और इसका पालन करो तो आप ईर्ष्या द्वेष और अनेक वैष्णव अपराधों से अपने आप को बचा सकोगे। इसीलिए कृष्णनाथ कविराज जी ने कहा है कि हमें ये श्लोक गले में बांध कर रखना चाहिए कि हमें हमेशा याद आए इस श्लोक का अर्थ। ओके, जस्ट टू मोर क्वेश्चन देन विल स्टॉप। इनका प्रश्न यह है कि हम प्रैक्टिकल रूप से इसका उपयोग कैसे करें, है कि नहीं? तीन आदमी से मिले ना, तो क्या कह रहे हैं भगवान इस श्लोक में? तीन आदमी आगे आगे। अच्छा, तो भगवान ने क्या कहा? तिनाद अपनी सुनिश्चय ने का अर्थ क्या है? हाँ, पेड़ से भी ज्यादा, घास से भी ज्यादा पसीर। दूसरों को आदर दो, आदर की उम्मीद रखते हुए नहीं। तो भगवान ने क्या कहा? दूसरों को आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद रखे हुए। अक्सर हम आदर देते हैं अगर दूसरा भी हमें आदर दे, है ना? हमारा सिद्धांत क्या रहता है? नेले पे देला। आप एक आम एक दांत दिखाओगे हम भी। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं पेड़ से भी ज्यादा सहनशील। तो पेड़ के विषय में कहा गया है संतों के द्वारा, अनेक श्लोक हैं शास्त्र में जिसमें भक्त को कहा गया कि सहनशील होना चाहिए वृक्ष के जैसे। क्यों? पेड़ जो है वृक्ष, सर्दी गर्मी, वर्षा हो, तेज धूप हो, हमेशा हर व्यक्ति का सहयोग लेता है। बारिश के मौसम में पेड़ की झाड़ी में जाकर अपने आप को पानी से बचाते हो। तेज धूप हो तो क्या करते हो? पेड़ की छाया में जाकर अपने आप को बचाते हो। और कई लोग पेड़ को काटते हैं आग पैदा करने के लिए। जब भी पेड़ कुछ कहता है, पेड़ में भी चेतना है। फिर घास, घास के सिर पर आप चलते हो, आपने कभी ये सोचा है? आपके सिर पर कोई चले तो आपको अच्छा लगता है? तो आप घास के सिर पर चलते हो। तो मतलब ये है कि कई बार प्रचार के दौरान आपको कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कोई आपका अपराध, कोई आपकी बेइज्जती करेगा, कोई आपको सहयोग देगा। पर ये नहीं कि अगर किसी ने बेइज्जती की या साथ नहीं दिया तो वो हमारा दुश्मन बन गया। हमें सहना चाहिए. जब भगवान नित्यानंदा जी और हरिदास ठाकुर प्रचार करने निकले थे महाप्रभु जी के आदेश पर, तो कई स्थानों में उनका स्वागत किया जाता था, कई स्थानों में लोग दरवाजा भी नहीं खोलते थे, कहते थे जासूस आ गए हमारे घर में. कई स्थानों में उनकी बेइज्जती की जाती थी, जब भी विचलित नहीं हुए प्रचार करने गए. तो उसी प्रकार हमें अगर कोई आपकी बेइज्जती भी करे, निंदा भी करे, तो आपको सह रहना चाहिए. ये नहीं कि आप नैले पे डला करो. ठीक है. बस एक और क्वेश्चन, देखा से मच्छर भी मच्छरों का अटैक बढ़ते जा रहा है. लास्ट क्वेश्चन,
जब भगवान परब्रह्म है तो भाई ये लीला क्यों कर रहे हैं कि उन्हें गर्मी लग रही है, जबकि वे सर्वशक्तिमान है, उन्हें तो गर्मी लग ही नहीं सकती.
भगवान
भक्तों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं?
भगवान भक्तों को सेवा का मौका देते हैं. जैसे जैसे कि ईश्वर परिषद में कहा गया ओम पूर्णा माता पूर्णा मिला, भगवान तो हर रूप से पूरे हैं, उन्हें ना आपकी जरूरत है ना हमारी. तो भगवान हमें मौका देते हैं उनका गुणगान करने के लिए, उनके लिए भोग तैयार करने के लिए, उनका लिए श्रृंगार करने के लिए, उनका मंदिर बनाने के लिए, उनकी सेवा में अपने धन को अर्पण करने के लिए. ये सब हमारी भलाई के लिए है, और जो भाग्यवान है वो इसका लाभ उठाते हैं. ओके, हरे कृष्ण.
लास्ट
डू टुमारो. सो विल हैव कीर्तन नाउ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मच्छर सबको आप हमें अच्छा प्रसाद खाया तो मच्छरों को हाँ हाँ हमारा रिश्ता.